ओम शांति। आज आप हम सभी के बीच विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक शिव पिता परमात्मा की विशेष आत्मा सर्वशक्तियों से सुशोभित शिव शक्ति स्वरूप आदरणीय त्रिवेणी बहन जी पधारी हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1976 में आपको यह अलौकिक ईश्वरीय जन्म प्राप्त हुआ, तो आप इस ईश्वरीय जन्म के बचपन से ही सेवा के प्रति विशेष आकर्षित रहे। आपने 1980 में गुजरात जोन इंचार्ज के आदरणीय सलाह दीदी के सानिध्य में अपने आप को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आप लौकिक जॉब करते हुए भी अपना संपूर्ण समय इस ईश्वरीय सेवा में देते रहे, लेकिन आपकी विशेष लगन मधुबन के प्रति रही, इसलिए आपने 1995 में अपने लौकिक जॉब को रिजाइन देकर स्वयं को मधुबन यज्ञ में समर्पित किया। तब से अब तक आप मधुबन में पांडव भवन में टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम देखते हैं कि हमारे आदरणीय त्रिवेणी बहन जी सदा ज्ञान योग की मस्ती में मस्त रहने वाली विशेष आत्माएं हैं। आपके जीवन में हम देखते हैं कि आप हमेशा अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके ज्ञान की मस्ती में मस्त रहती हैं। एक पाप के साथ सर्व संबंध रख करके उनके साथ के अनुभवों में खोई रहती हैं। व्यर्थ से मुक्त रहकर सदा समर्थ स्थिति में कैसे रहें, उसके लिए आप विशेष मनन चिंतन में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा हम सभी के बीच पधारी हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, और हम चाहेंगे कि आज आप अपने जीवन के अनुभवों को सवाल और जवाब के माध्यम से हम सभी के समक्ष शेयर करेंगे। आदरणीय त्रिवेणी बहन जी,
शांति। तो त्रिवेणी बहन जी से पहला प्रश्न ये है, आपको आध्यात्मिकता से लगाव कैसे पैदा हुआ?
ओम शांति। ओम शांति। बचपन से थोड़ी कुछ भक्ति तो करते थे। जब 10 साल के थे तभी श्रावण मास में विशेष सोमवार करना और छोटी छोटी सहेलियों के साथ मंदिर जाना, और इतना प्रभु पिता की नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन शंकर जी और शिव जी का फोटो तो घर में रहता था, तो उसको देखते थे तो समझते थे यही भगवान है। कभी कृष्ण की मूर्ति को देखते थे तो समझते थे यही भगवान है। इतनी स्पष्टता तो बुद्धि में बचपन में नहीं थी। विशेष श्रावण मास में शिव भगवान के मंदिर में जाते थे, दूध की लोटी चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, बिली पत्र चढ़ाते थे। बाकी ज्ञान मार्ग में तो मैं जब 16 साल की थी तब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। बचपन में हमारे साथ मंजू बहन जी, जो हमारे साथ ही है, जो मेरे से 7 साल बड़े हैं, लेकिन परिवार हमारा और उनका परिवार साथ में रहता था, इसके लिए हम आपस में बातचीत करते थे, तो उसको पहले ज्ञान प्राप्त हुआ। 1974 से ही उनको ज्ञान प्राप्त था, तो ज्ञान की कुछ न कुछ बातें हमारे से करते रहते थे। जो हमें अच्छी लगती थी तो हम उनसे सुनते रहते थे, लेकिन इतना ज्ञान तो बुद्धि में स्पष्ट नहीं रहा। मैं 1976 में जब स्कूल का समय पूरा करके कॉलेज में शुरू हुई, उस समय प्रेमाभाई हॉल भद्र अहमदाबाद में एक बड़ी प्रदर्शनी लगी थी, तो मंजू बहन जी ने कहा कि आप ये प्रदर्शनी देखने आओ, बहुत अच्छी है। उस दिन नवरात्रि के दिन चलते थे, तो पिताजी को कहा कि हम ये प्रदर्शनी देखने चलते हैं। तो पिताजी ने भी परिवार के साथ हमें सहयोग दिया और हम ये प्रदर्शनी देखने गए। उस प्रदर्शनी के अंदर नवरात्रि के दिनों के कारण भीड़ होने से हम इतना डिटेल में समझ नहीं सके, लेकिन हमें इंटरेस्ट हुआ कि ये समझने जैसी है, तो हमने सोचा कि दिन में आकर के अच्छी तरह से उसको समझना चाहिए। दूसरे दिन हम कॉलेज में गए तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको हमने कहा कि इस जगह अच्छी प्रदर्शनी लगी है, हम देखने चलते हैं। तो हम कॉलेज को छोड़ करके दोनों ही प्रदर्शनी देखने गए। उसमें अच्छी तरह से हमने सभी चित्र समझे, हमको बहुत अच्छा लगा। लास्ट काउंटर में जो शिविर के फॉर्म भरते थे, हम दोनों ने शिविर के फॉर्म भी भर दिए। 3 दिन की शिविर थी, तो शिविर में सवेरे का ही टाइम रहा, 7 से 9 बजे का टाइम, और यही टाइम हमारी कॉलेज का भी टाइम रहता था, 7 बजे से जाना रहता था। तो सोचा कि 3 दिन हम कॉलेज मिस करके ये शिविर कर लेते हैं, ऐसा मन बना दिया। दोनों, मेरी सहेली और मैं, दोनों ने हमें ये कॉलेज को मिस करके इस शिविर हमने अटेंड कर लिया। 3 दिन के बाद, जैसे योग शिविर के बाद ज्ञान शिविर होती है 4 दिन की, तो अनाउंस किया कि जो कोई 4 दिन और आना चाहते हैं तो आप अपना नाम दिखाए। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, समझने जैसी है, तो हमने सोचा कि पूरा ही हम शिविर करेंगे। तो 4 दिन मैंने नाम लिखवाया। मेरी सहेली ने कहा कि अभी और कॉलेज हम मिस नहीं करेंगे, तो उन्होंने 4 दिन अटेंड नहीं किया, सिर्फ 3 दिन ही मेरे साथ आई। 7 दिन हमने कोर्स पूरा किया, शिविर पूरा किया। उसके बाद हमें कहा गया कि ये रेगुलर क्लासेस चलती है, आप आ सकते हैं, मुरली क्लास उसके बाद होती है। तो मॉर्निंग क्लास सवेरे 7 बजे से ही होता है और शाम को भी चलता है, या तो आप अपना समय अलग निकाल करके भी आ सकते हैं। तो हमने सोचा कि घर में पिताजी से बात करेंगे, अगर छुट्टी देते हैं तो पूछ लेते हैं। पिताजी ने कहा कि अभी 7 दिन तो भर दिया, अभी पढ़ाई में ध्यान दो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, ये कॉलेज की जो पढ़ाई है उससे भी ये बढ़िया पढ़ाई है, उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। तो उसी रीति से हमने फिर कुछ प्रोग्राम मन के अंदर सेट किए कि जो हमारी ये कॉलेज की पढ़ाई है, जिसमें जो सहज रीति से हम पढ़ सकते हैं, ऐसे पीरियड बाद में होते हैं, तो 4 पीरियड रहते हैं, तो पहले 2 पीरियड हम कॉलेज के भर के, बाकी के 2 पीरियड है हम सेंटर पर जाकर के बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे, और ऐसे हम दोनों पढ़ाई का बैलेंस करेंगे, ऐसा हमने संकल्प किया। तो उसी रीति से हम 2 पीरियड कॉलेज के पढ़ते थे, 2 पीरियड फिर छोड़ करके हम ये बाबा की पढ़ाई पढ़ने जाते थे, क्योंकि पीछे के 2 पीरियड ऐसे सहज रहते थे जो पढ़ाई से भी हम कवर कर सकते थे पढ़ाई को। इस रीति से हमने पढ़ाई चालू रखी।
तो आपको फिर ये निश्चय कैसे हुआ कि यही भगवान का ज्ञान है?
हम बाबा के ज्ञान में चले तो पिताजी का ओपोजिशन होने लगा, कहते थे कि पढ़ाई में ध्यान दो, ये अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी इसमें ज्यादा नहीं जाओ, तो आप ये केंद्र पर नहीं जाओ, कहने का भाव उनका यही रहता था। लेकिन हमें तो ये ज्ञान की लगन लगी थी और जो ये अनुभव होता था ज्ञान और योग से, वो अनुभव तो जिंदगी में कभी नहीं किया था, तो मन की शांति जो मिलती थी और अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव होता था, उससे हमको लगता था कि यही सही है। बाकी हम बाबा से फर्स्ट टाइम मिलने के लिए 1977 में आए, तब हमने सोचा कि बाबा का दिव्य अवतरण ज्योति बिंदु का होता है, तो हमें तो ये चर्म चक्षु से दिखता होगा, क्योंकि बचपना था, इतना तो पता नहीं था। तो हमने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ, बाबा का अवतरण हुआ और दिव्य ज्योति ने अवतरण गुलजार दादी के तन में लिया और हमें दिव्य ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कहो वो हमें दिखाई दिया, जिससे मैंने समझा कि बाबा का अवतरण हो चुका है। तो इसलिए भी मुझे निश्चय हो गया क्योंकि मैंने साक्षात्कार किया। उसके पहले भी मैंने बचपन में एक साक्षात्कार किया था जब मैं 10 साल की थी, तो जैसे मेरा देह है वो निकल करके सामने 3-4 फुट दूर है, तो मैं सोचती हूँ ये कौन है, तो कहते ये आप ही है, अंदर से जवाब आता है। फिर मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मैं तो बिंदी हूँ, इतना बड़ी तो मैं नहीं हूँ, नहीं तुम इतना बड़ा, ये शरीर आपका ही है, ऐसे फिर अंदर ही अंदर जवाब आता है। तो ऐसा सोच देह को देख करके मैं डर गई, उतने में ही वो आत्मा और जो देह अलग दिख रही थी वो फिर उसमें विलीन हो गई, देह देखना अलग जो बंद हो गया। तो इस रीति से आत्मा और शरीर अलग है, वो भी मैंने एक साक्षात्कार पहले किया हुआ था। तो बाबा को अवतरण देखते हुए मेरे को ये स्पष्ट निश्चय हो गया कि शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, ऐसे ही ये गुलजार दादी के तन में आकर के हमें ज्ञान देते हैं।
आपके मन में अपने जीवन को ईश्वरीय कार्य में समर्पित करने का संकल्प क्यों आया?
ऐसे तो लौकिक में मेरी जॉब फिर 3 साल के बाद लग गई थी, मैं 19 साल की थी तभी मेरी टेलीफोन ऑफिस में ही जॉब लगी थी, लेकिन बचपन से मेरा यही संकल्प रहता था। मेरी सहेली जो मंजू बहन थी तो वो जैसे करती थी वैसे ही मैं करूं, ऐसा मेरा संकल्प रहता था। तो मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब तो वो कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो बीकॉम हुई तो मुझे संकल्प आया मैं भी बीकॉम ही होंगी, तो मैंने भी बीकॉम ही किया। फिर वो कॉलेज में से फिर उनको भी जॉब लग गई तो वो टेलीफोन में जॉब करती थी, तो मैं भी संकल्प करती थी मैं भी टेलीफोन ऑपरेटर ही बनूंगी। तो जैसे जैसे मैं छोटी थी संकल्प करती जाती थी वैसा ही फिर हो जाता था। तो उसी रीति से मैंने फिर बीकॉम भी किया और टेलीफोन में भी जॉब लगाई, और फिर जब ही वो भी ये ज्ञान मार्ग में चली तो उन्होंने ये जीवन बनाने का संकल्प किया, तो मैंने भी उसके साथ साथ हम दोनों लौकिक में भी सहेली रहे तो मैंने भी वही संकल्प किया कि मैं भी यही ब्रह्मा कुमारी बनूंगी।
तो ये संकल्प जो है हमको सोच समझ के करने चाहिए। मंजू बहन जी जो संकल्प किए वही किए। अभी मंजू बहन यहाँ डेली आते तो अभी आपको संकल्प नहीं आता इधर आने का? नेक्स्ट प्रश्न है, आपको मधुबन में समर्पित होने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ?
ऐसे मणिनगर सेवा केंद्र पर 1981 में मैं समर्पित हुई, तो उस समय हम टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब करते थे, तो इसलिए अहमदाबाद में ही जॉब थी इसलिए वहां ही रहते थे। लेकिन फिर संकल्प आया कि ये जॉब को छोड़ करके हमें, जब हम सेंटर पर रहते हैं तो सिर्फ हम अपने एरिया की या अहमदाबाद की ही सेवा करेंगे, लेकिन अगर हम ये छोड़ करके मधुबन जाएंगे तो मधुबन तो बेहद यज्ञ है, विश्व की सेवा है। तो यही भाव से हमने एक बार दादी जी को कहा कि जब टेलीफोन एक्सचेंज नहीं खुला था तो मैंने और मंजू बहन ने एक पत्र लिख करके दादी जी को दिया कि दादी जी हम दोनों टेलीफोन ऑपरेटर है और हम दोनों यहाँ यज्ञ में समर्पित होना चाहते हैं, तो हमारी ये विशेषता है अगर टेलीफोन एक्सचेंज खुलता है तो हमें पहले उसके लिए सेवा का चांस देवे। तो ये हमने लिख करके दिया था जब ही टेलीफोन एक्सचेंज नहीं खुला था, तो दादी को तो मन में ये ही था ही, और हम दोनों को जानते थे कि ये दोनों टेलीफोन ऑपरेटर है और सरला दीदी के पास रहती है। तो जब टेलीफोन की सेवाएं शुरू हुई तो हम दोनों को फिर चांस दिया, तो पहले मंजू बेन आए बाद में मैं आई।
कदम कदम पर आप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो ज्ञान में आने से पहले नहीं थी?
जैसे ज्ञान में आई तब मेरे में निर्भयता की शक्ति बढ़ी, क्योंकि पिताजी तो मेरे अगेंस्ट थे, इसलिए ज्ञान मार्ग में चलने में विघ्न रूप थे ही। तो हम जब भी बाबा की सेवा में जाते थे तो घर में देरी से आते थे, एग्जीबिशन देरी तक पूरी होती थी तो देरी से भी कई बार आते थे। तो पिताजी ने एक बार तो हमें वार्निंग दे दी कि टाइम पर आना है, जल्दी आना है, इतना देरी से नहीं आना था। लेकिन हमें इतना नशा चढ़ा हुआ था कि हम देरी से ही घर में आते थे, एग्जीबिशन में कभी गए तो 3 दिन की एग्जीबिशन में हम 3 दिन लेट आए घर में। तो उसके कारण पिताजी ने गुस्सा किया और कहा कि आप घर से बाहर निकल जाओ। तो हमें घर से बाहर रात को 12 बजे निकाल दिया, मैं और मेरे साथ छोटी बहन भी थी। तो उस समय हम घर से फिर अभी सोचे कि कहाँ जाए, तो पिताजी ने बोला कि आप घर से बाहर निकल जाओ। तो मुझे पता था कि ये जिद्दी है कि वो निकाल के ही रहेंगे। तो उसके समय मैंने घर में जाकर के थोड़े पैसे ले लिए और कपड़े एक पैर ले लिए और हम फिर घर से बाहर निकल गए और हम सरला दीदी के पास गए। सरला दीदी ने कहा कि अभी रात को 12 बजे है, अभी आप आए हैं तो आप भले यहाँ बाबा के कमरे में सो जाओ, सवेरे चले जाना। अभी रात के समय पर पिताजी ने माताजी को भेजा कि अपनी लड़कियों को ढूंढ के लाओ, कहाँ गई है। माताजी ने कहा कि अभी रात के समय मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, तो बोला सेंटर पर जाओ, वहां ही होंगे। तो माताजी रात को 2 बजे आई सेंटर पर, सरला दीदी को उठाया और कहा कि हमारी लड़की आई है। बोला हाँ आई है, सवेरे आप ले जाना, अभी सो गई है। तो ऐसे फिर सवेरे हमें सरला दीदी ने कहा कि आप अभी माताजी आकर के आपको लेने आई है तो आप जरूर घर चले जाओ। तो हमने सोचा कि अभी घर से निकाल दिया है तो हम घर नहीं जाएंगे, सरला दीदी को कहा, लेकिन हम अपनी मौसी के घर जाएंगे। तो मौसी को ऐसे बच्चे नहीं थे, तो हमारे प्रति भी उनका प्यार रहता था और हमें भी मौसी के लिए प्यार रहता था। तो हम मौसी के घर चले गए और मौसी को हमने बताया कि हमें घर से निकाल दिया गया है। और उस समय मेरी जॉब लग गई थी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, 1 महीना हुआ था ट्रेनिंग का। तो मैंने बोला मेरी टेलीफोन की ट्रेनिंग जो चल रही हो 3 मास की है, वो पूरी हो जाएगी, तब तक मुझे स्टाइपेंड मिलता है, बाद में मुझे पूरी पे मिलेगी। तो अगर आप हमें अपने पास रखेंगे तो हम आपको भारी नहीं पड़ेंगे और हम बाबा के ज्ञान में चलेंगे और आपके घर में रहेंगे। अगर आप ना करेंगे तो भी हम अलग मकान लेकर के भी रहेंगे। उसी रीति से हमने मौसी को बताया, मौसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे पिताजी को हमारे मन की बात बता दी। तो पिताजी ने अपने रिश्तेदारों को भेजना शुरू किया कि लड़की को लेके आओ वहां से। तो जो रिश्तेदार हमें लेने आते थे, हम एक ही बात करते थे कि आपने तो हमें नहीं निकाला है, जिन्होंने निकाला है उनको आना चाहिए। तो वो बात सुनकर के फिर एक दिन वो खुद आ गए हमको लेने के लिए। तो हमने बोला कि हम ऐसे नहीं आएंगे आपके साथ। हमने 2 पॉइंट्स लिख करके पिताजी को दिया, 2 हमारी कंडीशन है, आपको मंजूर है तो हम आएंगे। और 2 कंडीशन हमने पहले लिखी कि हमें रोज सेंटर पर जाने देना पड़ेगा आपको, आप मना नहीं करेंगे। दूसरी मैंने कंडीशन उसमें लिखी कि हमें शादी के लिए जो आप बोलते रहते हैं तो आप हमें विघ्न रूप नहीं बनेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो ये 2 बातें उन्होंने मंजूर की, फिर हम पिताजी के साथ घर में गए। लेकिन मन के अंदर तो ये संकल्प था ही कि हमें ये बंधन से छूटना ही है, कहाँ तक बंधन में रहेंगे, अगर घर में ही रहेंगे तो फिर विश्व की सेवा हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने युक्ति से ये मुक्ति कैसे मिले वो बात मन बुद्धि में हमने रखी कि कैसे भी करके हमें छूटना है। तो मैंने थोड़े समय के बाद एक युक्ति ढूंढ निकाली कि मैं सेंटर पर जाने के लिए जो चीजें चाहिए उसको मैं अपने पेमेंट से इकट्ठी करूंगी। तो जैसे कि अपने व्हाइट कपड़े इकट्ठे करना या अपने सूटकेस लाना, बैग बेडिंग तैयार करना, तो उसी रीति से मैं अपनी सब चीजें इकट्ठी करती थी और फिर मैं अपनी ये चीजें जो पुराने समय में माड़िया ऊपर रहता था उसमें मैं छिपा करके रख देती थी, जो किसी को पता नहीं चलता था। तो अंदर से मैंने तैयारी कर ली और बाहर से उसी रीति से मैंने तैयारी शुरू की। तो अभी मैंने 3 मास तक पगार देना घर में बंद कर दिया। मैंने बोला पगार नहीं देंगे, नाक बंद करेंगे तो मुंह खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ऐसा मैंने सोच लिया। तो मैंने ये पगार देना बंद किया। तो 3 मास के बाद पिताजी ने बोला कि तुम पेमेंट भी नहीं देती है घर में, तो तुम क्या करती है? तो मैंने बोला कि अभी मैं पेमेंट घर में नहीं दूंगी, ऐसे मैंने बोल दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा भी आ गया पिताजी को, तो बोला तुम घर से बाहर निकल जाओ, ऐसे मुझे बोला। तो मुझे तो वही चाहिए था कि वो ऐसे बोले और मैं जाऊं। तो मैंने युक्ति से उनको कहा कि ऐसे तो हमें सेंटर पर रखेंगे नहीं, आप ऐसा करो मुझे चिट्ठी लिख करके दो जिसके आधार से हमें सेंटर पर रखे, क्योंकि घर में से अगर हम जाते हैं तो दीदी तो कहेंगी चिट्ठी लाए हैं, पहला प्रश्न वही पूछेगी। तो इसलिए पिताजी को जब गुस्से में थे तो मुझे चिट्ठी लिख करके दिया और फिर मैंने दीदी को दे दिया और हम सेंटर पर फिर रहने आ गए।
मतलब पिताजी को गुस्सा करने के लिए मजबूर कर दिया आपने। आपने दादियों अथवा वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभवों का लाभ कैसे उठाया मधुबन में रहते हुए?
ऐसे तो हम बड़ों के साथ सरला दीदी के पास भी वहां रहे, तो उनकी भी विशेषताएं हम देखते थे कि कैसे एक्यूरेसी उसमें थी, हर चीज को अच्छी तरह से वो मैनेज करते थे, तो वो बातें तो हम देखते ही थे। और कितना अंतर्मुखता में रह करके, व्यर्थ से मुक्त रह करके अपने पुरुषार्थ में लगे रहते थे, वो भी हम देखते थे। लेकिन यहाँ मधुबन में आए तो बेहद में बड़ी दादियों जैसे बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी और भी मनोहर दादी थी, शांतामणि दादी थी और चंद्रमणि दादी, गुलजार दादी, रतनमोहिनी दादी, दादियां उस समय बहुत थी, इसलिए दादियों के साथ साथ रहने का भी चांस मिलता था। और उस समय इतना कोई बड़ा पार्टी का ग्रुप नहीं रहता था, दादियां भी थोड़ी फ्री रहती थी तो आंगन में आकर के भी बैठती थी, तो आंगन में आकर के बैठती थी तो हमसे बात भी करती थी। एक बार दादी जी के साथ हमें, प्रकाशमणि दादी जी के साथ गांधीधाम, वहां मेला लगा था तो वहां जाने का मेरा प्रोग्राम बना, तो दादी जी के साथ ही मेरे को बैठने का चांस मिला। तो एक ही कार में साथ में ही हम बैठे थे और दादी के पास ही बैठे थे। तो दादी का संकल्प रहता था कि सदैव उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाना। तो बाबा के गीत बज रहे थे, दादी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर के ताली बजाना शुरू किया और ताली बजाते वो भी डांस करने लगे और हमें भी डांस कराने लगे। तो ऐसे दादी ने कहा कि ताली बजाओ, ऐसे डांस करो, तो उसी रीति से दादी खुद भी खुश रह करके सभी को उमंग उत्साह में लाती थी और हर एक में उमंग उत्साह भरती रहती थी। तो ऐसे मैंने एक बार संकल्प किया था कि दादी जहाँ जाए वहाँ ही मुझे भी जाना है, ऐसे मैंने मन संकल्प कर लिया। बाकी मैंने बताया किसी को नहीं, लेकिन दादी भी फिर 2-3 बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि दादी जहाँ जाती थी मेरा प्रोग्राम बन ही जाता था और मैं भी जाती थी। फिर मैंने सोचा 2-3 प्रोग्राम ऐसे मेरे साथ साथ बन गए। एक बार दिल्ली में भी दादी के साथ जाने का प्रोग्राम बना और उसी रीति से एक बार सिरोही में साथ में जाने का प्रोग्राम बना, तो 3-4 बार प्रोग्राम बने थे। फिर मुझे ही अंदर से संकल्प आया कि मुझे ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए कि दादी जहाँ जाए वहाँ ही मैं जाऊँ। दादी तो बेहद की है, बेहद जगह जाना होता है और हमारी तो यहाँ सेवाएं होती है। तो ऐसे ही जैसे कि बाबा ने हमें ये समझा दिया, तो दादी में कई विशेषताएं थी कि कैसे सभी को एक होकर के चलाना, एक मत करके चलना, हरेक को रिगार्ड देना और सभी को साथ मिला करके कार्य को आगे बढ़ाना, ये दादी की विशेषताएं थी जो हमने देखी।
जैसे दादी जी ने आपका हाथ पकड़ा, आपने भी किसी का हाथ पकड़ा?
बाबा ने अपना हाथ पकड़ा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी अभी आप समान हर एक को बनाना है। तो विश्व की आत्माओं को मन बुद्धि से तो हम हाथ पकड़ करके बाबा के हाथ में हाथ देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अपने तक नहीं रखना है, उसको बाप तक पहुंचाना है, इसलिए हम बाप तक पहुंचाने की ही कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, हमने देखा है कि आप अधिकतर योगयुक्त अवस्था में रहते हैं, इसके लिए आप कौन सा पुरुषार्थ करते हैं?
ऐसे तो योगी तो सभी आत्माएं हैं और सभी योगयुक्त रहने का पुरुषार्थ करते ही है। हम भी विशेष जो कार्य करते हैं वहां अभी इतना कार्य कारोबार नहीं है, हल्का हो गया है। जो पहले इतना कारोबार था, जो हमें याद छूट जाती थी और कारोबार में ज्यादा लग जाते थे, लेकिन अभी ड्रामा अनुसार ये मोबाइल जब से चल गए हैं तब से हमारे को योग करने का चांस अच्छा मिल गया है। वो हमारे लिए ज्यादा आशीर्वाद रूप बना है टेलीफोन वालों के लिए, मैं ऐसा समझती हूँ। तो हम विशेष वहाँ बैठे बैठे सामने बाबा की फोटो होती है तो हम विशेष योग करने का लक्ष्य रखते हैं, और जो भी आत्माएं हैं उसको हम सकाश देने का लक्ष्य रखते हैं। और ऐसे ये टेलीफोन की सेवाएं स्थूल में नहीं है तो हम मन से सोचते हैं कि और क्या सेवा करें जो दूसरों को हम हेल्पफुल बने। तो फिर मैंने ये मेडिकल में जैसे कि एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी जैसी बुक्स पढ़ना मैंने शुरू किया, और फिर उसके आधार से मैंने कईयों को ऐसे फायदा हुआ है और ऐसे मैंने लाभ दिया है। उसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक भाई है जिसको चला नहीं जाता था, तो एक हाथ में अपने दोस्त को पकड़ा था, दूसरे हाथ से उन्होंने अपने पिताजी को पकड़ा था, ऐसे लंगड़ाता चल रहा था। हमारा पोजीशन ऐसी है कि जो कोई भी जाता है कैसे जाता है वो हमको दिखता है, तो हमने आवाज करके बुलाया कि महेंद्र भाई आप अंदर आइए, क्या हुआ है? तो बोला आप देखो ना, मैं चल ही नहीं रहा हूँ, दोनों को पकड़ा मैं अंदर कैसे आऊँ? तो बस जैसे चल रहे ना वैसे ही आप अंदर आ जाइए। तो दोनों को पकड़ करके वो अंदर आए। फिर मैंने बोला कि मैं आपकी ट्रीटमेंट करूंगी और आप अभी ही 5 मिनट में आप सीधा चलने लगेंगे दोनों को छोड़ के। बोला ऐसा है क्या? बोलो हाँ, लेकिन आपको रोना आ जाएगा, ऐसी ट्रीटमेंट है, चिल्लाना नहीं, चुप रहना, देही अभिमानी बन जाना। तो ऐसे करके मैंने उसकी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर की शुरू किया। 5 मिनट किया, वो चिल्लाता बे नहीं करनी है, मैं बोला करना है, चुप हो जाओ, बोलना नहीं। ऐसे करके मैंने उसकी ट्रीटमेंट किया, फिर वो चलने लगा सीधा। फिर आधे घंटे के बाद जिसको वो पकड़ के चल रहा था वो भाई मिला, उसको पूछा कहाँ गया महेंद्र भाई? बोला वो तो नकीले का चक्कर लगाने चला गया। तो इतना उसको अच्छा हो गया। तो ऐसे ऐसे कई जो चल नहीं सकते हैं, मेरा ध्यान जाता है कि उसका पैर ऐसे लंगड़ा था, चल रहा है ठीक नहीं, तो उसको मैं पूछती हूँ कि आपको क्या हुआ, फिर उसको बुलाती हूँ और उसको मेरे से हो सके उतनी मैं उसको हेल्प करती हूँ और एक्यूप्रेशर से ठीक करने का पुरुषार्थ करती हूँ। ओम शांति।
तो जो भी टेढ़ा चलता है चले जाना, कहेगा 5 मिनट के अंदर सारा ठीक हो जाएगा। आपकी सभी ब्राह्मणों के प्रति शुभ भावना शुभकामना, आप सभी ब्राह्मणों के प्रति शुभ भावना शुभकामना कैसे रखते हैं, और यदि शुभ भावना कामना में नहीं है तो उसका कारण क्या और निवारण क्या करेंगे?
ऐसे तो बाबा ने कहा है कि सभी आत्माओं के प्रति हमें शुभ भावना ही रखनी है, लेकिन कई बार कईयों के संस्कार अनुसार कोई अपना पार्ट ऐसा बजाता है तो क्यों क्या के संकल्प विकल्प में चले जाते हैं और कई बार डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन हम शुभ भावनाएं कईयों में मैंने रखी और मैंने देखा कि उसका परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण कोई आत्मा ऐसी भी होती है कि जो जिसके कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब होता रहता है, वो सभी जानते भी है। लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति भी मैंने शुभ भावनाएं रखी तो मुझे ये अनुभव हुआ कि वो आत्मा का भी परिवर्तन हुआ है, जो यज्ञ में सभी उसको अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने ये परिवर्तन किया है। ऐसी आत्माएं भी यहाँ है जिसका किसी का नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप खुद भी कई अनुभव करते होंगे।
हम शुभ भावना कैसे रखे होंगे?
हम जब अमृत वेला विशेष बैठते हैं तो उन आत्माओं को इमर्श करते हैं और उन आत्माओं के प्रति भी हम कहते हैं कि आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगलमय हो, आप सुखी रहो, और आपको शांति और ये पवित्रता की किरणें हम प्रदान करते हैं। तो उसी रीति से बाबा से हम किरणें लेते हैं और उन आत्माओं को देते हैं। तो हमारा जो भी हिसाब किताब होता है कोई भी जन्म का, वो चुक्त हो जाता है और आत्मा वो संतुष्ट हो जाती है, तो उनकी भावनाएं अंदर से बदल जाती है।
आपने हमको भी दी शुभ भावना की किरणें।
जैसे बाप दादा अवतरण होते हैं तो जिस स्थान पर अवतरित होते हैं उस स्थान को ही अमृत वेला इमर्ज करके उसी स्थान पर बाबा के साथ बैठ जाती हूँ और बाबा को कहती हूँ कि बाबा आप जैसे सबको सकाश देते हैं, मैं भी आपकी सेवा में हाजिर हूँ, हम भी आपके साथ सेवा में। तो जैसे डायमंड हॉल में इतनी सारी आत्माएं हैं तो हम इस सभी सारी आत्माओं को इमर्ज, ऐसे ही हॉल को इमर्ज करके सभी को हम सकाश देते हैं, ऐसे भी हम सकाश देते हैं। कभी कभी ये मधुबन वाले, ज्ञान सरोवर वाले, शांति वाले और मीठी दादिया और वरिष्ठ भाई बहन उसको भी कभी कभी इमर्ज करके सकाश देते हैं। और कभी कभी जो हमने सेंटर देखे हैं तो हम दृष्टि में उसको विजुलाइज करते हैं, जैसे अहमदाबाद के कोई कोई सेंटर देखे हैं और कहाँ प्रोग्राम में गए हैं उस सेंटर को देखे हैं, तो उनके क्लासरूम को और उनके स्टूडेंट्स को हम इमर्ज करके उसको भी हम सकाश देते हैं। बाकी विश्व के ग्लोब पर बाबा के साथ, मम्मा के साथ और अष्ट रत्नों के साथ हम हाजिर है, उसी रीति से भी हम विश्व को सकाश देने की कोशिश करते हैं।
आप योग में बाबा से क्या क्या बातें करते हैं और कौन कौन से संबंध से बाबा को याद करते हैं?
जैसे बाबा मुरली के अंदर बाप के रूप में विशेष रहते हैं और हमको बच्चे बच्चे कहते, तो बाप और बच्चे का विशेष संबंध रहता है, तो हम भी बाबा को बाप के रूप में विशेष याद करते हैं और बाबा हमें बच्चा बनाता है तो हम भी बाबा को बच्चे के रूप में विशेष याद करते हैं। कोई भी बात, प्रॉब्लम, परिस्थिति होती है, कोई काम निकालना होता है तो बाबा को बच्चे के रूप में कहते हैं, बच्चे होते हुए आज्ञाकारी होते हैं तो हमारा काम हो ही जाता है।
हम ब्राह्मणों की उन्नति तीव्र गति से हो उसके लिए कौन सा ऐसा पुरुषार्थ अभी करने की जरूरत है?
ऐसे तो बाबा हर मुरली में हर बात कहते हैं, हम एडवाइस करने वाले छोटे क्या एडवाइस करेंगे। बाकी बाबा कहते हैं जितना हो सके उतना देह भान से न्यारा दीते छो करके लाइट और माइट की स्थिति में रहेंगे तो दूसरों को लाइट माइट दे सकेंगे, सकाश दे सकेंगे। तो अशरीरीपन का अभ्यास, और मैं बिंदु हूँ, मेरा बाबा बिंदु है और जिसको भी देखे बिंदु को देखने का अभ्यास विशेष हम संकल्प करते हैं और वो पुरुषार्थ करते हैं।
आप कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए आप मन में क्या सोचते हैं कि कितने समय में आप बन सकते हैं?
कर्मातीत तो हरेक की अपनी अपनी अवस्था होती है, हरेक की कर्मातीत की अवस्था एक जैसी नहीं होगी। 14 कला वाला राम कर्मातीत 14 कला में बनेगा, 16 कला वाला श्री कृष्ण 16 कला में कर्मातीत बनेगा, और 8 कला वाला होगा जो अंत में द्वापर युग के एंड में, द्वापर की शुरुआत या त्रेता के अंत में आने वाला 8 कला वाला भी होगा जो 8 कला में भी कर्मातीत होगा। तो हरेक की अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था होगी। जैसे जो डॉक्टर है वो अपनी पढ़ाई से डॉक्टरी करेगा, लेकिन जो कंपाउंडर है वो अपनी पढ़ाई से कंपाउंडरगिरी करेगा। तो हरेक का अपनी अपनी संपूर्णता की स्टेज अलग अलग रहेगी।
आपकी इसमें सीमा कितनी है? प्रश्न ये है,
हरेक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भी बाबा की याद में पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भी जो हमारा जहाँ तक पहुँचने का होगा वहाँ पहुँच जाएंगे, तब स्टॉप हो जाएगा।
अच्छा, बहुत आगे चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उसके लिए आप कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, क्या नवीनता करते हैं?
हम सदैव पुरुषार्थ करने के लिए हम स्वयं को ही देखते हैं और दूसरों को जब देखते हैं तो उसका पार्ट है, उस आत्मा का पार्ट को देख करके हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, वो अपना पार्ट बजा रहे, हमें साक्षी होकर के देखना है और उसके प्रति भी हमें शुभ भावना हम रखते हैं तो उससे हम उससे टक्कर और चक्कर में नहीं जाते हैं, लेकिन उससे न्यारा होकर के हम अपनी स्थिति में आगे बढ़ते हैं।
कोई ऐसी बात जो इस प्रश्नावली में नहीं है और आप बताना चाहते हैं तो बताइए।
बाबा कैसे हमें मदद करते हैं वो कई बार मैंने अनुभव किया कि एक बार हम ऑफिस में थे तो ऑफिस के अंदर प्रेजेंट मार्क करने के लिए 10:30 बजे का टाइम था, तो हम 10:30 बजे खड़े थे, तो सभी एक साथ में सभी को राइट टाइम पर प्रेजेंट मार्क करनी, तो सारा ही भीड़ हो जाती है, तो उस समय हम भी खड़े थे। तो उतने में कोई भाई होगा जो उसकी बोलने में कोई फर्क आया और उन्होंने कुछ बात बोली जो मेरे कान में इतनी नहीं जा पाई, लेकिन फिर उसको बाबा मेरे साथ है तो उसको क्या जवाब देना है, क्या अनुभव कराना है, वो बाबा ने कराया। उसको भयंकर ऐसा साक्षात्कार हुआ जो इतनी भीड़ से वो भाग करके दूर चला गया और इतना चिल्लाया। तो बाद में मैंने पूछा कि आपको क्या हुआ, तो बोला आपके द्वारा मुझे ऐसा भयंकर साक्षात्कार हुआ। तो बाबा भी उसके द्वारा जिसको क्या अनुभव कराना है वो हमारी सेफ्टी बाबा रखता है। और हम कहाँ भी जाते हैं तो जब शुरू में हम बाबा के बने तो ऐसा ही अनुभव होता था कि बाबा के दो नयन है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं और हमारा ख्याल रख रहे हैं वो हम अनुभव करते थे। तो बचपन के दिनों में हमें ये विशेष बाबा ने अनुभव कराया है।
कौन सा भयंकर साक्षात्कार था
उनको? जैसे कि महाकाली का साक्षात्कार हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया कि आपने कैसा भयंकर रूप अपना बताया, मुंह किया, तो मैं तो बहुत बुरी तरह से डर गया। तो मैं समझा मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कराने वाला बाबा ने ही साक्षात्कार उसको करा दिया, ऐसा मैंने अनुभव किया।
और किसको प्रश्न पूछने? कोई सामने वाले कोई साक्षात्कार हो रहा है? ज्वालामुखी स्थिति से विकर्मों को भस्म कैसे करें, अथवा ज्वालामुखी योग कैसे करें विकर्मों को दग्ध करने के लिए?
ज्वालामुखी स्थिति माना कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसमें से कोई गर्मी निकले। ज्वालामुखी माना हमारी लगन की अगन जितनी बढ़ती है वही है ज्वालामुखी स्थिति। तो आप कितनी लगन से वो कार्य कर रहे हैं, कितनी लगन से बाबा को याद कर रहे हैं, उतना ही आपकी अंदर की अगन जलती है और उससे विघ्न खत्म होते हैं। सेवाएं हम सभी करते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से करते हैं? कर्म करते हैं लेकिन कर्म के साथ योग है, करंट आ रही है, तो विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन सिर्फ कर्म ही करते हैं तो ऑर्डिनरी कर्म हो जाता है। योग टूटा हुआ है तो फिर कैसे वो विकर्म विनाश होंगे? तो कर्म के साथ योग का बैलेंस होना जरूरी है।
और कोई प्रश्न किसी को? सभी संतुष्ट?
आएंगे, जरूर आएंगे।
ताले भी जा दोगी?
ओम शांति। तो हमारे आदरणीय त्रिवेणी बहन जी हम सभी के मध्य पधारे और अपने अनमोल अनुभवों को हम सभी के समक्ष शेयर किया, अपने लौकिक जीवन से लेकर के अब तक के कि आपने जीवन में क्या क्या अनुभव किए, समस्याओं को कैसे आपने फेस किया, उनको का सामना करके उनको फिनिश किया और अपने इस जीवन में कैसे आप आगे बढ़ते रहे। तो हम त्रिवेणी बहन जी का यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आप आगे से आते रहेंगे, ये भी आपने विशेष वायदा किया है। ओम शांति।